बंदे मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, बंदे। नातीरथ में नामूरत में, नातीरथ में नामूरत में, नए कांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैला करम में रहता, ना मैं क्रिया करम में रहता, ना ही जोग संन्यास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। नाम जप में, नाम तप में, नाम जप में, नाम तप में, न रोजे उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन ले बन, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, बंदे मुझको कहाँ।
ओम शांति। 12वीं शताब्दी में यूरोप की भूमि पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसके वैराग की सुगंध एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे यूरोप में और फिर पूरे विश्व में फैली। उसका नाम था असीसी का संत, संत फ्रांसिस। दिखाया है कि वो बहुत समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। बचपन से ही उसके सारे सहचर मित्र विलासी है और वो भी उन्हीं की तरह भोगी और विलासी बन जाता है। इटली का शहर असीसी, पर जैसे जैसे बड़ा होता है और भोग विलास में डूबता जाता है। अचानक एक बार गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है। बचने की संभावना कम थी, परंतु उस बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर लेटे लेटे महीनों तक वो लेटा रहा और उस अवस्था में उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। अचानक उसे कुछ दृश्य दिखने लगे। उसका एक स्वभाव था कि जो भी द्वार पर आता था उसे कुछ भी दे देना, और इसके लिए सब उसका उपहास भी उड़ाते थे। कभी उसने भिक्षु को देखा था किसी, और उसे सब कुछ दे दिया था, पर उस घटना ने उसके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। और अब जब वो बीमार था तब उसे कुछ कुछ दिखने लगा, आवाजें आने लगी कि तुम्हारा जो जीवन है वो सेवार्थ है, तुम्हारा जो जीवन है वो तपस्यार्थ है। और जब वो बाहर निकला, जो कुछ उसे दिखा और जो कुछ उसने संकल्प किए थे, अब उसने सोचा कि उसे साकार करना है, और उसने अपना सब कुछ वितरण करना, दान करना चालू किया। उसके परिवार वालों ने, समाज ने उसका बहुत विरोध किया, बहिष्कार किया। एक समय ऐसा आया जब वो नहीं माना तो उसे, उसके पिता ने उसको निकाल भी दिया घर से बाहर, पर वो अपने संकल्प पर अचल था। 2 वर्ष किसी गुफा में रहा, तपस्या की। धीरे धीरे जब बाहर निकला तब उसने एक नए संघ की स्थापना की, जो कि ईसाई धर्म में पहली बार ऐसा हुआ कि संन्यास की स्थापना हुई। अभी तक ईसाई में इस तरह की कोई प्रथा नहीं थी, और उसने जो संन्यास स्थापन किया उसके केवल 2 ही नियम थे। एक संपूर्ण ब्रह्मचर्य चैस्टिटी, और दूसरा था पावर्टी, दरिद्रता, पैसे नहीं रखने हैं, हाथ में कुछ भी ना हो, खाली हो। और इस संत फ्रांसिस के जीवन में एक बहुत सुंदर कहानी का वृत्तांत है। इस फ्रांसिस को पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम था। जितने पशु पक्षी थे उनको वो भाई और बहन कहता था, यहां तक कि अपने शरीर को ब्रदर डोंकी कहता था। सिस्टर बर्ड्स, ब्रदर डोंकी, और जितने पशु पक्षी थे उसके इर्द गिर्द आ जाते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार जहां संत फ्रांसिस रहते थे, असीसी नाम का वो गांव, वहां पर एक शिकारी आता है और पक्षियों का शिकार करता है। सारे दिन भर रुका रहता है, यहां भटकता है, वहां भटकता है, अपना तीर कमान लेकर, और मुश्किल से 1 या 2 पक्षी का वो शिकार कर पाता है। एक बार अचानक उसकी नजर संत फ्रांसिस पर पड़ती है और देखता है संत फ्रांसिस खड़ा है और उसके इर्द गिर्द इतने सारे पक्षी है। वो आश्चर्य से देखता रहता है कि एक मनुष्य के आसपास इतने पक्षी, अगर ऐसा मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। वो संत फ्रांसिस के पास जाता है, कहता है, यह आपने कैसे कर लिया, मुझे भी सिखाओ। संत फ्रांसिस कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए वो मेरे इर्द गिर्द है। वो कहता है, मैं भी उनसे प्रेम करूंगा ताकि वो मेरे इर्द गिर्द। तो वो जाता है खेत में, खड़ा हो जाता है ऐसे हाथ फैलाते हुए, दिन भर खड़ा रहता है, एक पक्षी नहीं आता है, निराश होता है। दूसरे दिन फिर जाता है संत फ्रांसिस के पास, कहता है, आप जब खड़े रहते हो तो सारे पशु पक्षी आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, मैं खड़ा पूरा दिन भर रहा, एक पक्षी नहीं आया, ऐसा क्यों? फ्रांसिस कहता है, प्रोबेबली, शायद, कदाचित वो पक्षी तुमसे प्रेम नहीं करते क्योंकि शायद तुम्हारे हृदय में उनके प्रति सच्चा प्यार नहीं है। वो कहता है, ऐसी बात है, अब मैं उनसे सच्चा प्यार करूंगा। दूसरे दिन जाता है, खड़ा रहता है और सच्चा प्रेम प्रकट करता है कि हे पक्षियों, हे पंछियों, मुझे तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है। पूरा दिन खड़ा रहता है, कोई नहीं आता है। तीसरे दिन संकल्प करता है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। जितना प्यार सेंट फ्रांसिस का है उतना ही प्यार मेरा भी है। और फिर शाम होते होते उसके हृदय में ऐसा प्यार प्रकट होता है, अब तक ढोंग वाला था, अब तक दिखावे वाला था, अब तक स्वार्थ था, अब तक इच्छा थी कि बहुत पैसे कमाऊंगा इनको पकड़ के मार के, पर अब सच्चा प्यार प्रकट हो जाता है और शाम तक उसके इर्द गिर्द पशु पक्षी आ जाते हैं। पर अब क्या, उसे मारने की इच्छा नहीं है, अब उसे पकड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आमूल हृदय परिवर्तन हुआ है। सी चेंज, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में प्रभु ईश्वरीय प्रेम कहो, प्रभु प्रेम कहो, उन पक्षियों के प्रेम के साथ वो भी प्रकट हो जाता है और वो संत फ्रांसिस का अनुयायी बन जाता है। तो भगवान कहां प्रकट होते हैं? बाबा कहां आते हैं? जिस हृदय में छल कपट है वहां नहीं आते, जहां ढोंग है वहां नहीं आते, जहां झूठ है वहां नहीं आते। आज सुबह की साकार मुरली मंजूबेन लाइन कैसी होनी चाहिए बाप के साथ? क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, एकदम क्लियर। कैसी होनी चाहिए बुद्धि की लाइन बाप के साथ? एकदम क्लियर। इस संसार में किसी के साथ तुम्हारा बुद्धि का योग ना हो, बुद्धि का योग एक बाप के साथ हो, एक बाप को ही याद करो बस, क्योंकि संसार क्षण भंगुर है। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो साथ क्या जाएगा? अविनाशी ज्ञान, रत्न साथ जाएंगे। बाबा भोले भंडारी है, क्या लेता है तुमसे और क्या देता है? कौड़िया देता है, जैसे वो अमेरिकन लोग आते हैं पुरानी वस्तुएं लेते, पाई पैसे की वस्तुएं भारत वाले बेचते हैं और वो बड़ी कीमत देकर अदा कर चले जाते हैं। बाप तुमको, तुमसे क्या लेता है? कौड़िया। और देता क्या है तुमको? महल। जहां हम सोचते हैं वो है, वहां वो नहीं। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में घूम रहे हैं, ऋषियों से मिल रहे हैं। एक ऋषि से पूछते हैं, शर्वंग ऋषि से, हे मुनिवर बताओ मैं कहां रहूं, 14 वर्ष बिताने मैं कहां रहूं? वो कहते राम जाकर उस हृदय में रहो जो पवित्र है। कहां रहो? उस हृदय में रहो जो शुद्ध है। परंतु वो फिर भी पूछता है, परंतु मुझे 14 वर्ष के लिए कोई स्थूल स्थान बताओ। तब वो कहते जाओ पंचवटी। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढते हो तुम? मैं वहां नहीं हूं जहां तुम सोच रहे हो। मैं कहां हूं? तेरे पास में हूं। कबीर ने 21 स्थान गिनाए हैं जहां वो नहीं है। हम 21 स्थान यहां ऐसे देखेंगे जहां वो है। ना तीर्थ में, सबसे पहले मैं तीर्थ में नहीं हूं। उन स्थूल तीर्थों में मैं नहीं हूं, फिर किस तीर्थ में? एक तो परमधाम तीर्थ है वहां है, मधुबन तीर्थ है वहां है, और परम मधुबन से भी बड़ा तीर्थ कौन सा है? मन, पवित्र मन ही तीर्थ है। जहां हृदय पवित्र है, जहां हृदय शुद्ध है, हथियाला बांधो आज की मुरली में है, वहां मैं हूं। ज्ञान चिता पर जो बैठे हैं वहां मैं हूं। तो बाबा कहां है? इस तीर्थ में। सबसे पहली नजर शाम को बाबा की किन आत्माओं पर पड़ेगी? जो बहुत शुद्ध है, जो बहुत पवित्र है, जो हंस बुद्धि है। और हंस बुद्धि अर्थात विट्ठल भाई, हंस बुद्धि अर्थात जिनके मन में किसी के प्रति भी अशुभ भावना नहीं, साधारण भावनाएं भी नहीं, हरेक को हरेक के प्रति कैसी भावना है? शुभ, श्रेष्ठ, शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, हरेक का कल्याण हो जाए ऐसी भावनाएं। जहां हृदय की शुद्धि है, जहां हृदय पवित्र है वो तीर्थ है, जहां संकल्पों में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस है, जहां भावनाएं बहुत शुद्ध है, जहां स्वप्न में भी अपवित्रता स्पर्श नहीं करती, जहां इतनी प्यूरिटी है, पवित्रता की टकसाल, मिंट ऑफ प्यूरिटी, पैसों की मिंट होती है ना, जहां पैसे छपते हैं टकसाल, जहां हृदय में निरंतर पवित्रता के संकल्प छपते रहते हैं, क्रिएट होते रहते हैं, जिनका मन पवित्रता की टकसाल है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। और बाबा वहां पर है। हां, वो स्थूल रूप में परमधाम में है, परंतु सूक्ष्म में वो उस हृदय में निरंतर निवास कर रहा है, जो हृदय तीर्थ बन गया है। तीर्थ अर्थात पवित्र स्थान। तीर्थ का दूसरा एक अर्थ है कि जहां संत महात्माएं, योगी, तपस्वी आत्माएं जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं, या फिर वो तीर्थों पर इसलिए जाते हैं ताकि तीर्थों को भी पावन कर सके। तो सबसे पहला स्थान जहां बाबा रहता है वो कौन सा है? तीर्थ। कौन सा तीर्थ? मन। मन मधुवन में वो है, परमधाम में वो है, सूक्ष्म वतन में वो है, परंतु निरंतर जहां पवित्रता है वहां वो है। ना मैं तीर्थ में, ना मैं मूरत में, उन मूर्तियों में मैं नहीं हूं, उन जड़ भूतों में मैं नहीं हूं, वो प्रतीक मात्र है, उनमें मैं नहीं हूं। ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थी? क्यों बनी मूर्तियां द्वापर से? किसने सोचा होगा सबसे पहली बार मूर्ति बनाऊं यादगार के रूप में? एक व्यक्ति है जिसे भूलने की आदत है, पत्नी कहती है ये चीज लेके आना है, पर दिन भर इतना व्यस्त रहता है वो भूल जाता है, सोचता है एक गांठ बांध लूं अपनी धोती को ताकि याद रखूं, जाता है, कारोबार में व्यस्त हो जाता है, घर निकलने का समय आता है, अचानक नजर गांठ पर पड़ती है, याद आती है कि वो वस्तु लेनी है। गांठ का औचित्य क्या है? याद दिलाना। गांठ अपने आप में कुछ नहीं है, स्थूल है, पर अब इस पिता का बेटा देख लेता है कि पिता ने गांठ बांधी है धोती में। क्यों बांधी है वो उसे पता नहीं, वो भी गांठ बांधना चालू करता है, और फिर उस परिवार में, उस खानदान में वो नियम बनता है। फिर उसका जो बेटा है वो भी गांठ बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि पिता ने बांधी थी, फिर उसके बेटे ने बांधी थी, और अचानक कई पीढ़ियां बीत जाती, फिर वो धर्म परंपरा बन जाती, और अचानक एक दिन एक ऐसा सुपुत्र जन्म लेता है, वो गांठ बांधना बंद करता है, उसके प्रति विद्रोह हो जाता है, उसे अधार्मिक कहा जाता है। गांठ का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, गांठ प्रतीक है। मूर्ति का अपने आप में कोई प्रतीक नहीं था, कोई महत्व नहीं था, वो प्रतीक था याद दिलाने के लिए किसी और की, परंतु बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, बेटों ने देखा पिताओं को, बेटियों ने देखा माताओं को, और गांठ बांधना चालू कर दी। अगर नहीं बांधता है तो तुम नास्तिक हो, बहिष्कृत कर दो इसे समाज से, भगवान को नहीं मानते हो। दूसरा, मैं मूरत में नहीं हूं, परंतु जो दर्शनीय मूर्त बन गए उनमें मैं हूं। प्रेम की ऐसी भरपूर गंगा बनो मंजू बहन, कैसी कैसी सुखदेव भाई, प्रेम की ऐसी भरपूर गंगा बनो कैसी, जो प्रेम का सागर बाप आप में दिखाई दे। जो दर्शनीय मूर्त है वहां पर बाप है, उन स्थूल मूर्तियों में, उन स्टैच्यूज में, उन भूतों में, उन तस्वीरों में, उन चित्रों में, उन पिक्चर्स में, पोर्ट्रेट्स में, वो नहीं है। वो कहां है? उनमें जो दर्शनीय मूर्त बन गए हैं, जिनमें बाप के दर्शन होते हैं, इतना कॉपी की है बाप को, वहां मैं हूं। तीसरा, ना मैं एकांत निवास में, एकांत में, गुफाओं में, कंदराओं में, योगी तपस्वी बैठे हुए तपस्या में, कल की मुरली वो तत्वों के साथ योग लगाते हैं। क्या करते हैं? तत्वों के साथ। तुम राजयोगी हो, तुम तत्वों के साथ योग नहीं लगाते। उनके लिए ब्रह्म जो है वो चेतन है, प्रज्ञानम ब्रह्म वेद वाक्य है। और बाबा कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म प्रज्ञा, प्रज्ञानम नहीं है, चेतन नहीं है, ब्रह्म जड़ है। वेदांत में चार वाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है, अयमात्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये चारों ही वाक्य बाबा ने दूसरे अर्थों में बताए। पहला, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि नहीं है, मैं ब्रह्म में रहने वाली आत्मा हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसलिए ये वाक्य का खंडन हुआ। दूसरा, अयमात्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म नहीं हूं, मैं आत्मा ब्रह्म में रहने वाली हूं, यह भी वाक्य का खंडन हुआ। तीसरा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। बाबा ने कहा जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है। मुरलियों में आता है, उसमें लिखा हुआ है योग वशिष्ठ में, राम ये जगत बना ही हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, ये जगत बना हुआ है, इसलिए तो दर्द होता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सिर दर्द हुआ तो बोल के बताओ मैं ब्रह्म हूं, नहीं होता है। माइग्रेन अटैक में बोल के बताओ ये जगत मिथ्या, नहीं कर सकते। अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसी, तुम ही वो हो, पर ब्रह्म नहीं, आत्मा। तो मैं एकांत निवास में नहीं हूं, फिर कहां हूं? एकांत में हूं, जो एक के अंत में खो गए हैं उनमें मैं हूं। किस में हूं? जो एक के अंत में खो गए हैं मैं उनमें हूं, जो एक रस्तिति वाले हैं मैं उनमें हूं, उनकी यादों में हूं, उनके विचारों में हूं, उनकी भावनाओं में हूं, उनकी स्मृति में हूं, उनके स्वप्नों में हूं, उनके साथ हूं, पल पल उनके साथ हूं, आगे हूं, पीछे हूं, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास रहते हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ चलते हो। यहीं से तो बनाया उसको सर्वव्यापी। मैं एकांत निवास में नहीं हूं, कहां हूं? एकांत में हूं, जो एक के अंत में खो गए हैं उनमें हूं। आज की साकार मुरली बुद्धि बहुत भटकती है ना, पर ऐसी बुद्धि को एक बाप में लगा दो। जो बुद्धि एक के अंत में टिक गई है वहां मैं हूं, ना मैं तीरथ में, ना मैं मूरत में, ना मैं एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं उन मंदिरों में नहीं हूं। फिर किस मंदिर में हूं? मन मंदिर में हूं, हृदय मंदिर में हूं, भावनाओं के मंदिर में हूं। जो भावनाएं बहुत शुद्ध हो गई है उन मंदिरों में मैं रहता हूं। भागवत में दिखाया है कृष्ण जो है सब गोपियों के घर थोड़ी जाता है, चुनी हुई चुनिंदा गोपियों के यहां माखन चुराने जाता है, जो बहुत शुद्ध है, जिनका हृदय मक्खन के समान शुद्ध है, साफ है, वहीं वो जाता है जहां मैं टूट गया है, मैं की मटकी फूटी और हृदय मक्खन मक्खन हो गया, वहां वो जाता है। ऐसे मंदिर अपने शरीर को ही मंदिर बना देना है, अपने मन को ही मंदिर बना देना है। शरीर मंदिर हो जाए अर्थात शरीर इतना शुद्ध हो जाए, परसों की साकार मुरली तुम्हें शरीर को और आत्मा दोनों को पावन बनाना है। धारणा के लिए सार पॉइंट नंबर वन, तुम्हें आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पावन शरीर सतयुग में मिलेगा, पर अभी भी शरीर को पवित्र बना देना है। कैसे बनाएंगे? शरीर को पवित्र बनाया जाता है कैसे? संयम से, उपवास से। शरीर को पवित्र कैसे बनाया जाता है? टॉक्सिन्स कैसे निकाले जाते हैं? डिटॉक्स से, दवाइयों से नहीं। शरीर, शरीर की भी तपस्या है, आत्मा की भी तपस्या है, तो शरीर की भी तपस्या है। तो मंदिर बना देना है अपने शरीर को। इस शरीर में कोई भी अपवित्र वस्तु जाने ना पाए, इस शरीर में ऐसी कोई वस्तु ना जाने पाए जिससे इस प्रकृति में कहीं पर भी हिंसा हो रही है। इस प्रकृति में कहीं पर भी हमारे शरीर में जाने वाली वस्तु के कारण हिंसा यदि होती है तो वो क्या है? अपवित्रता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा नहीं करनी है यहां पर। शहद हिंसा है या हिंसक है? सोचना। दूध हिंसा या हिंसा? इस शरीर में ऐसा कुछ ना जाए जिससे हिंसा की गूंज प्रकृति में सुनाई दे। आज सुबह का वरदान विजयी अर्थात स्व दूसरे और प्रकृति, प्रकृति पर विजयी अर्थात वाइब्रेशंस वायुमंडल, स्थूल समस्याओं के ऊपर भी विजयी। प्रकृति की बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारा वेस्टेज प्रकृति में जा रहा है, और यदि वो हमारी वजह से जा रहा है तो हम प्रकृति जीत नहीं है। तो शरीर को मंदिर बना देना है, पवित्र बना देना है, मन मंदिर बना देना है, मन को पवित्र बना देना है, शरीर को पवित्र बना। ये शरीर और शरीर का कोई भी अंग किसी भी विकार की ओर आकर्षित ना हो, इस शरीर में किसी भी प्रकार की उत्तेजना विकार की ना हो। शरीर के सारे भोग आज की मुरली में क्षणभंगुर सुख है संसार के सारे, ये तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तो क्या किया जाए जब तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, विकार की वेग उत्पन्न हो? एक छोटा सा संकल्प है जिसका प्रयोग करना है। जब तीव्र इच्छा हो, वो चीज खाने की जो खानी नहीं है, वो चीज पहनने की जो पहननी नहीं है, वो चीज उपभोग करने की जो उपभोग करनी नहीं है, वो चीज करने की जो विकार है, अपनी डायरी में लिख के रखना है, इट इज जस्ट अ फीलिंग। क्या सोचना है उस समय? ये जस्ट फीलिंग, ये फीलिंग है, आई और चली जाएगी, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। जैसे ठंड लगती है गर्मी होती है, वैसे ही सुख की तीव्र कामना हो रही है, काम का वेग उत्पन्न हो रहा है, इट इज जस्ट फीलिंग। बस ये संकल्प लाना है, आई ये चली भी जाएगी, जरूरी नहीं इस मोमेंट को इसको कंट्रोल कर लेना, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इस पल में एक सदी छिपी हुई है, अगर इस पल को रोक दिया जाए, इस पल को रोक दिया जाए तो हम विजयी होंगे, और ये विजय हमारी अपनी होगी, जाकर संसार में जितने कारागार है, कारावास है, तुरुंग जेल है, उनमें जो अपराधी है, जो कि बंद है, किस वजह से, एक सेकंड का तीव्र वेग आ गया, वेग वासना का, और कुकर्म विकर्म कर बैठे, और अब सारी उम्र जेल में बीत रही है, उनसे पूछा गया तुमने ये क्यों किया, उन्होंने कहा एक ऐसा पल आ गया वेग कि रोक ही नहीं पाए, ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हुई देह भोग की कि रोक नहीं पाए, इट इज जस्ट अ फीलिंग, आई और चली जाएगी, सुबह की मुरली क्षणभंगुर है, आया और चला गया, तटस्थ होकर देखना है, खुजली हो रही है क्या करना है, खुजाते रहना है, जितना खुजाओगे और देखते रहो, कुछ नहीं होगी, इच्छा तीव्र वासना खुजली की तरह है, आई और चली जाएगी, अगर तटस्थ हो जाओ, ये शरीर मंदिर है, कोई भी विकारी स्पर्श इस शरीर को स्पर्श न करे, ना किसी स्त्री का ना किसी पुरुष का, ये शरीर किसी दूसरे के भोग के लिए नहीं है, तो ना मैं मंदिर में, पर किस मंदिर में हूं, इस शरीर जब पवित्र हो जाए, जब मन पवित्र हो जाए वहां मैं विद्यमान हूं, ना मैं मस्जिद में, मस्जिद अर्थात जहां नमाजें अदा की जाती है, वो मस्जिद में वो है, अल्लाह का घर है मस्जिद, मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर भी वुजू, वहां पर भी हाथ पैर धोए जाते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की लौकिक चर्चा अलाउड नहीं है, वहां पर मौन में रहकर किए तो वो अल्लाह के सामने वो इबादत तस्लीम होती है, स्वीकार होती है, नहीं तो नहीं। भारत में जितनी मस्जिद है उतनी गैर, भारत एक गैर मुसलमान देश होते हुए भी सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत देश में है, 3 लाख से भी ज्यादा टोटल, जितनी की उन कंट्रीज में भी नहीं है, ऐसा हमारा देश है, इसलिए तो भगवान यहां आता है, इसलिए तो अल्लाह का घर है ये, तो मस्जिद अर्थात जहां का वायुमंडल पाक हो, मस्जिद अर्थात जहां पर नमाजें अदा की जाए, जहां पर समर्पण हो, मुस्लिम अर्थात वो व्यक्ति जो अल्लाह के प्रति समर्पित है, मुस्लिम शब्द का अर्थ ही वो है, ही हु हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ अनटू द लॉर्ड, वो मुस्लिम है, सच्चा मुस्लिम वो है, तो सच्ची सच्ची मस्जिद मन में है, मन को ही पाक मस्जिद बना देना, ना मैं काबा कैलाश में, मैं उस काबा में नहीं हूं, काबा वो पाक स्थान है जहां पर दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं वो उसको भगवान का घर मानते हैं, और वो उसकी स्थापना हजरत मोहम्मद इब्राहिम ने की, तो वो काबा हमारे हृदय में है, जो पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान, इंग्लिश में कहते हैं सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसेंक्ट अत्यंत पवित्रता जहां पर है उसे सैक्रोसेंक्ट कहा जाता है, सैक्रम सैंक्टोरम, सैक्रम सैंक्टोरम अर्थात पवित्र में भी पवित्र, इतना प्योर इतना शुद्ध जहां अशुद्धि आ ही नहीं सकती, ऐसा सैंक्टम सैंक्टोरम पवित्रतम जो स्थान है, तो वो काबा हमारे हृदय में है, वहां पर बाबा है, ना मैं कैलाश में, उस कैलाश में मैं नहीं हूं, किस कैलाश में मैं हूं, बहुत श्रेष्ठ भावनाओं का ऊंचा पर्वत है जहां पर, भावनाओं की उड़ान है जहां पर, वहां पर वो है। जरा भी अपवित्र संकल्प नहीं, जरा भी अशुद्ध भावनाएं नहीं, बहुत ऊंची भावनाएं रखना, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, बहुत सारी निगेटिविटी दिख रही है, पर ये आश्चर्य नहीं है कि भगवान खुद भी कितना ऊंची भावनाएं रखता है, सबके बारे में सब कुछ उसको पता है, जितना हमें नहीं पता। हम सोचते हैं हमें इसके बारे में इसके 10 अवगुण पता है, बाबा को तो उसके 100 पता है, पर इसके बाद भी उसके प्रति 100% पॉजिटिव है। कितनी बड़ी बात है ना। मैं जप में, उस जप में मैं नहीं हूं तो किस जप में हूं? अजपा जाप में वो है ना। मैं जप में, उस जप में मैं नहीं हूं, मन मनाभव के जाप में मैं हूं। मन से उसकी याद चल रही है ना। मैं तप में, मैं उस तप में नहीं हूं, फिर किस तप में हूं? किस तप में हूं? आज का स्लोगन क्या है मंजू बहन? सच्चे राजयोगी वो है जो अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, ये तपस्या जो करते हैं वहां पर बाबा है। जो अपनी एक एक कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, मन जीत जगत जीत, नेक्स्ट संडे की मुरली। जो अभी जगत जीत नहीं है वो वहां पर विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, मुरली नंबर 2। ना मैं व्रत में, मैं उन व्रतों में नहीं हूं, किस व्रत में हूं? अभी अभी मुरली चली शांतिवन में शिवरात्रि की, पवित्रता का व्रत। जहां पवित्रता का व्रत है वहां मैं हूं। ना उपवास में, उन उपवासों में मैं नहीं हूं, जहां पर चिंता होती है कब उपवास तोड़ू, जहां पर चिंता होती है उपवास तोड़ने के बाद सबसे पहले क्या खाना है, जहां पर चिंता होती है कि उपवास तोड़ने के बाद क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी तैयारी करके रखूं, उपवास में क्या खाऊं उसकी तैयारी अलग। कैसा उपवास है? उपवास है या अनशन? उपवास और अनशन में अंतर है। ये उपवास नहीं है, ये वो है, एक चेंज ऑफ डाइट, एक पिकनिक का दिन, रोज वो खाते आज ये खाएंगे। प्रतीक्षा होती है मन में और नया नया संकल्प आती है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। बुद्धि भोजन में, उपवास अर्थात उसके पास रहना, वो तो बहुत दूर रहा, बस गांठ की पूजा कर रहे हैं। गांठ क्यों बांधी थी पता ही नहीं, ये गांठ ही भगवान हो गई, उसकी गांठ की पूजा चालू है। क्यों करते हो? हमारे दादाओं ने की थी। क्यों करते हो? परंपरा है। तुम क्यों नहीं करते? तुम भी करो। नास्तिक, अधार्मिक, उपवास नहीं करते, रोजा नहीं रखते? तुमको रखना चाहिए रोजा। शायद उपवास के दिन उतना खा लेते जितनी बाकी दिन भी नहीं खाते उपवास के नाम पर। उपवास करना है विकारों का, कोई भी विकार का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करना, निर्जला। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, मैं क्रियाकांड में नहीं हूं, फिर कहां हूं? मैं सेवा में हूं। क्रियाकांड में नहीं हूं, चार चार घंटा पूजा, कोई देखने वाला नहीं है तो 5 मिनट में पूजा खत्म। मंदिर में पुजारी आता है, लॉक खोलता है, अंदर बैठता है, घुमाया, थोड़ा सा किया, पूजा खत्म। आज त्योहार है, हजारों पब्लिक देख रही है, तो पुजारी आता है, और बीच बीच में उसको उन्माद, और बीच बीच में बेहोश हो जाता है, एकदम प्रभु प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, कुछ कुछ होने लगता है जब हजारों लोग देख रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं, कुछ कुछ होता है, और जब कोई नहीं देख रहा है वहां फटाफट फटाफट और चलो ई पूजा। आजकल तो ई पूजा है, बुलाने की जरूरत ही नहीं है, पंडित जी बस उस पर ही सब, कंप्यूटर में बड़ा कंप्यूटर, स्क्रीन नीचे रख दो, वहीं पे सब कुछ होता है, फूल डालो, नारियल फोड़ो, नारियल की आवश्यकता नहीं, बटन क्लिक करो नारियल ऊपर उठता है, टुकड़े होते हैं और डाला जाता है, फूल ऊपर उठते हैं और डाले जाते हैं, ई पूजा। अच्छा, ऑर्डर भी कर सकते हैं पूजा और सीधा प्रसाद ले लेना। ना मैं क्रियाकर्म में, यही तो संसार में हुआ, इसलिए तो भगवान को आना पड़ा, नहीं तो उसको आने की क्या जरूरत थी। ये ऐसा करने लगे, गांठों की बैठ के पूजा करने लगे, बिल्ली को बांधने लगे डाली पर, इसलिए तो आना पड़ा। ना ही योग संन्यास में, मैं उस तरह के योग में नहीं हूं, क्योंकि वो तत्व योग है, तत्वों के साथ योग कर रहे, उस योग में मैं नहीं हूं, मैं इस योग में हूं जो बाप के साथ है। ना मैं उस संन्यास में हूं, संन्यास तो ले लेते पर संन्यास के नाम पर क्या क्या करते रहते, कमाई चालू रहती है। जो महात्मा ये कहते हैं कि धन माया है, वो अपने एक प्रवचन के 1,00,000 रुपए लेते हैं, ज्यादा। तो उस संन्यास में मैं नहीं हूं, मैं सच्चे सच्चे संन्यासी तुम हो, जिन्होंने विकारों का संन्यास किया है, मैं वहां हूं। ना प्राण में ना पिंड में, मैं प्राणों में नहीं हूं, आत्मा परमात्मा, आत्मा में परमात्मा थोड़ी है, मैं वहां उस प्राण में नहीं। हां, मैं उस प्राण में हूं जो प्राण प्राण जिन्होंने उस प्राणनाथ को दे दिया है अपना, जिन्होंने प्रण किया है अपने प्राण को प्राणनाथ में समाने का, वह उस प्राण में मैं हूं। ना मैं पिंड में, पिंड अर्थात इस शरीर को पिंड कहा जाता है, इस शरीर में मैं नहीं हूं। इस पिंड के कई सारे अर्थ है, पिंड अर्थात जो भात और चावल का बना हुआ होता है, श्राद्ध में दिया जाता है, वहां पर भी मैं नहीं हूं। ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, मैं इस भक्ति मार्ग में इस संसार को, इस कायनात को ब्रह्मांड कहा जाता है, मैं इस ब्रह्मांड में नहीं हूं, मैं उस ब्रह्मांड में हूं जहां वो है ऊपर। ना आकाश में, मैं उस आकाश में नहीं हूं, मैं प्रभु प्रेम के आकाश में हूं जहां प्रभु प्रेम है। ना मैं त्रिकुटी भंवर में, जहां त्रिकुटी, त्रिकुटी अर्थात भ्रुकुटी को त्रिकुटी कहा जाता है, यहां पर भी मैं नहीं हूं, यहां तो आत्मा का निवास है। पर हां, यहां बैठी हुई आत्मा जो उसकी याद में है, वहां मैं हूं। ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, प्रकृति की किसी गुफा में, कंदराओं में मैं छिपा नहीं हूं, पर हां, जो अंतर्मुक्ता की गुफा में है बैठे, वहां मैं हूं। खोजी होए सब श्वासों के श्वास में, श्वासों के उन श्वासों में भी मैं नहीं हूं, प्राणायाम में मैं नहीं हूं। बाबा कहते प्राणायाम चढ़ाते, उनमें मैं नहीं हूं, पर हां, जिनके श्वासों श्वास सफल हो रहे हैं, जिनके श्वासों श्वास में बाप की याद है, वहां मैं हूं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, क्या बनना पड़ेगा पाने के लिए? खोजी, खोजी अर्थात सीकर, खोजी अर्थात अन्वेषक, खोजी अर्थात प्राप्त करने वाला, ढूंढने वाला। खोजी बन जाओ, सत्यान्वेषी बन जाओ, अन्वेषण करो, खोज करना है। खोज, गोताखोर कैसे खोज करता है वैसे खोज करना है। जो मिले नहीं, जो मिले मिला नहीं, उसे पा लेने की धुंध मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। खोजी बनना है, सीकर, ढूंढना है कहां है। खोजी बन जाओ तो कब मिलेगा वो? एक पल की तलाश में ही मिल जाएगा, ज्यादा ढूंढने ही नहीं पड़ेगा। एक सेकंड में मुक्ति जीवन में, एक सेकंड में कितनी सारी मुरलियां चली है, एक सेकंड में कर दो। तलाश एक सेकंड में मिल जाएगा, वो ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, खोजो तो तुम प्राप्त करोगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड ई शैल फाइंड। कह कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैं कहां रहता हूं? विश्वास में। तो ऐसी 21 चीजें जहां वो नहीं है। पहला तीर्थ, किस तीर्थ में है? मन तीर्थ में। मूर्त, दर्शनीय मूर्त में। एकांत, किस एकांत में? जहां एकांत एक के अंत में खो गया। किस मंदिर में? जहां मन मंदिर है। किस मस्जिद में? जहां मन ही मस्जिद है। किस काबे में? जहां हृदय काबा बन गया। किस कैलाश में? जहां शुभ भावनाएं की बहुत ऊंच पर्वत है। किस जाप में है? किस जप में? अजपा जाप में। किस तप में है? जहां कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया गया। किस व्रत में है? पवित्रता के व्रत में। किस उपवास में है? विकारों के उपवास में। किस क्रियाक्रम में है? सेवा का व्रत जिन्होंने लिया है। किस योग में है? जो बाप के साथ है। किस संन्यास में है? जहां विकारों का संन्यास है। किस प्राण में है? जहां प्राणों का, प्राणों में वो समाया हुआ है। किस पिंड में है? जिस पिंड में, पिंड अर्थात शरीर, पिंड अर्थात आत्मा को भी कहा जाता है, जिस शरीर में उसकी याद है, या फिर जो शरीर उसकी सेवार्थ समर्पित है, उस पिंड में वो है। किस ब्रह्मांड में? वो वाला ऊपर का ब्रह्मांड। किस आकाश में? प्रभु प्रेम का आकाश। किस त्रिकुटी भवर में? जहां पर उसकी याद है। किस गुफा में? अंतर्मुक्ता की गुफा में। किन श्वासों के श्वास में? जहां विश्वास है। जो श्वासोश्वास में बाप की याद है। तो आज बाबा मिलन का दिन है, तो क्या करना है? अपने आप को भरना है। किस व्रत से? पवित्रता के व्रत से। किस गुफा में बैठना है सारे दिन? अंतर्मुक्ता की गुफा में। कौन सा जाप करना है सारे दिन? अजपा जाप करना है। किस त्रिकुटी भवर में बैठना है? आत्मा के इस भ्रुकुटी भवर में बैठकर उसकी याद करनी है। किस मस्जिद में जाना है? किस मंदिर में जाना है? किस काबे, किस कैलाश में जाना है? अपने ही अंदर के। किस एकांत स्थान में बैठना है? एक के अंत में खोने के स्थान में। तो सारे दिन भर अंतर्मुखता, सारे दिन भर उसकी याद, सारे दिन भर उपवास, सारे दिन भर व्रत, मौन, एकांत, अंतर्मुखता। तो शाम का जो मिलन होगा फिर वो कैसा होगा? इंद्रिय सुख का, जिसमें अनुभव हो जाएगा। हृदय क्या बन जाएगा? गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो ऐसे अपने आप को अभी से तैयार करना है, आह्वान करना है सारे दिन भर, आ जाओ। वो प्राण नाथ है, प्राणों में समा जाए, अमृत का सागर है, अमृत से भर दे, ताकि हम अमर हो जाए, पुरुषार्थ अमर हो जाए, उमंग उत्साह अमर हो जाए, पवित्रता ब्रह्मचर्य अमर हो जाए। ऐसी अखंड ज्योत सारे दिन भर जगा के रखनी है। तो अभी अभी सब स्थिर होके बैठेंगे और एक के याद में, एक के अंत में खो जाएंगे, बुद्धि एकदम क्लियर हो। ओम शांति।
मोको